यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे सब लोग बोल रहे हैं ना एवरीबॉडी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे श्रील प्रभुपाद की राधे श्याम ये हमारे बड़े भाई है ज्येष्ठ भ्राता ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्लैंकेट में से हाथ बाहर निकाल लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो बचे हुए लोग हैं वो कैसे आएंगे यहां पर? तो आप सब लोगों का शनिवार 2 फरवरी 2019 के शुभ अवसर पर काम्यवन धाम में स्वागत है। एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में अगर बोलना है तो एक मिनट के अंदर बोल देते हैं आपको। दो फरवरी 2019 पौष मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी का दिन, शनिवार का दिन और नक्षत्र पूर्व आषाढ़ा। इस शुभ अवसर पर पौष महोत्सव के माघ मेला पौष या को जो कुंभ मेला के शुभ अवसर पर आप लोगों का इधर विमल कुंड पे प्रय तीर्थराज विमल कुंड पे स्वागत है। हरि बोल। तो भगवान के अनंत वन है ब्रज में, उसमें 108 वन भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। उन 108 में से 12 वन बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, जिनका बार बार उल्लेख होता है शास्त्रों में और लीलाओं में। उसमें से 5 वन जो है वो यमुना जी के पूर्व दिशा में है और 7 वन यमुना जी के पश्चिम दिशा में है। तो उसमें से भी सर्वोच्च प्रिय वन कौन सा है? वृंदावन। वैसे तो पूरे ब्रजमंडल को भी वृंदावन कहते हैं, लेकिन फिर भी वृंदावन नाम का एक अलग वन भी है जो 84 कोस के अंदर 20 कोस का है। उसमें पौराणिक वृंदावन, आज का भौगोलिक वृंदावन तो डिफरेंट है, वो तो जनपद के रूप में एक ही छोटा सा जगह है, लेकिन जो पौराणिक वृंदावन है उसके अंदर नंदगांव बरसाना यावट यमुना गोवर्धन सब सम्मिलित है। आज का वृंदावन भी उसमें सम्मिलित है और यमुना जी उसके गोल घुमा करती थी परिक्रमा के रूप में। तो दूसरे नंबर का भगवान का प्रिय वन जो है वो काम्य वन है, वृंदावन के बाद वाला, और इसको प्रति वृंदावन भी कहा है क्योंकि वृंदावन जितना उसका गौरव है इतना उसका भी गौरव है। और आज के तारीख में जो वृंदावन नाम का वृंदावन है वो बहुत भीड़ वाला हो गया है, मतलब अंदर घुसना ही मुश्किल है, इतने आश्रम हो गए, इतने मंदिर हो गए, गली छोटी हो गई, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई वहाँ पर, एकांत नहीं मिलता बहुत यहाँ पर। लेकिन ये काम्यवन अभी भी अपना एकांत ब्रज का स्वरूप बनाए रखा हुआ है। यू कैन जो ब्रज होता है ना, ब्रज जिसको हम ब्रज कहते हैं, उसको आप अनुभव कर सकते हैं यहाँ पर, वो शांति, वो वातावरण, भीड़ भाड़ शोरगुल कुछ नहीं। और काम्यवन में अभी तक वो कमर्शियलिज्म नहीं हुआ है अभी तक, वो सब मॉल दुकान ये सब छोटा सब नहीं है अभी, फिर भी गांव है बहुत सुंदर। तो एक इसके कथा बताने के पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ इतिहास हमारे समय का थोड़े बहुत आगे वाला, कि 7 मंदिर थे वृंदावन में, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा रमन जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा दामोदर और राधा गोकुलानंद, राधा वल्लभ नहीं आते उसके अंदर, गौड़ीय संप्रदाय के 7 मंदिर हैं और फिर राधा वल्लभ बांके बिहारी उसके आगे हैं। तो ये जब ही आक्रमण हुआ ना मुगलों का, तो औरंगजेब ने आकर वो गोविंद देव तोड़ दिया, तो जब भी वो आक्रमण हो रहा था, होने के पहले एक खबर मिल गई थी, तो सारे जो विग्रह हैं हमारे मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, सब विग्रहों को ना उन्होंने वहां से शिफ्ट किया। यहां तक कि राधा वल्लभ जी भी शिफ्ट हो गए। आज के हमारा दोपहर का भोजन जो है वो उसी राधा वल्लभ मंदिर में है जहां पर राधा वल्लभ जी आकर रुके थे उस समय के लिए, फिर वहीं से वापस लौट के गए हैं। लेकिन बाकी हमारे जितने विग्रह हैं वो सभी यहां पर आके रुके हुए हैं, हॉल्ट, उधर विश्राम किया उन्होंने। तो ये मदन मोहन जी का मंदिर है, ये है और भी एक मदन मोहन जी का मंदिर है, उसका नाम है गोकुल चंद्रमा। वो भी पुष्टि मार्गी लोग बाल्य भाव में उसकी सेवा करते हैं, वात्सल्य भाव में। फिर गोविंद जी हम जाएंगे 12 बजे के पहले, उसके आगे गोपीनाथ जी भी हैं। मैंने बताया ना सबको कि म्यूजिक नहीं चाहिए बीच में। तो ये सब तीनों विग्रह, जितने भी विग्रह हैं, वो सब आके यहाँ पर रहे हैं कुछ समय के लिए। फिर उसके आगे यहाँ से वो जयपुर चले गए हैं। तो आज की तारीख में मदन मोहन जी का जो मूल विग्रह है वो करौली में है, जयपुर से भी 6 घंटा आगे है। और गोविंद जी यहाँ थे, अभी वो भी जयपुर में है। लेकिन वृंदा देवी जो है ओरिजिनल, जो वृंदावन में थी, वो काम्यवन में है। वो गोपीनाथ जी का भी मंदिर यहाँ पर है, गोपीनाथ जी ओरिजिनल अभी जयपुर में है। तो ये उसका छोटा सा इतिहास है। तो भगवान की लीला में काम्यवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि काम यानी काम, भौतिक इच्छाएं या उसे हमारी इच्छाएं जो है उसको काम कहते हैं। तो सारे प्रकार के हमारे जो काम हैं यहाँ पर तृप्त हो जाते हैं। भौतिक प्रकार के काम, इच्छा जो होती है वो शांत हो जाती है, और आध्यात्मिक जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाती है, संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं काम बन जाए, मतलब काम बन जाए तो काम बन जाए, हाँ, काम बन जाए तो काम बन जाए, ऐसे कहते हैं यहाँ पर। तो भगवान एक बार वन में अपने बालकों के साथ में खेल रहे थे। तो उसके पहली उसकी जो बैकग्राउंड है कथा की, वो इस प्रकार की है कि एक बिमल राजा हुए, राजा बिमल, बहुत ही ऐसा नाम था ना उनका, बिमल यानी पूर्णता, मल से मुक्त, एकदम शुद्ध भक्त थे वो, लेकिन राजा थे वो, और बड़े भक्त थे भगवान के। उनको सब कुछ, उनका राज्य धर्मशील था, संपत्ति थी, राज्य बहुत सुखी था, लेकिन उनको पुत्र या पुत्री नहीं थी। कहते हैं उनको पुत्र के हेतु उन्होंने बहुत विवाह किए, 3000 पत्नियां हो गई उनकी, लेकिन किसी से भी संतान प्राप्त नहीं हुई। तो फिर उन्होंने अपने गुरुजी शायद वशिष्ठ मुनि को बुलाया और उनको पूछा, क्या बात है, आप बताइए, सब कुछ है लेकिन दुख है, बालक नहीं है, वंशज कौन होगा, राज्य कौन चलाएगा। तो वो ध्यान लगाते हैं और ध्यान में देखते हैं भूत, भविष्य और वर्तमान, और कहते हैं कि आपके नसीब में कहीं भी पुत्र नहीं है। तो फिर भी वो कहते हैं और देखो जरा, और देखो, तो और देखते हैं। राधे राधे महाराज जी, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राधे, धन्यवाद। तो वो कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं जरा कुंडली में और देखो, जरा डीप में जाके देखो, डीप में जाके कुछ है क्या उसके अंदर। तो कहते हैं हाँ कुछ देख रहा हूं मैं, आपको ना 3 करोड़ कन्याएं होने वाली है, 3 करोड़ कन्याओं की प्राप्ति होगी आपको। तो अभी देखो आपने पूछा क्या था और जवाब क्या मिल गया, कितनी टेंशन वाली बात हो गई ना ये। अभी एक पुत्र के लिए कोशिश कर रहे जो 3 करोड़ कन्याओं का लाभ हो रहा है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं चिंता मत करना, उन सबका विवाह परम भगवान, परात्पर भगवान गोलोकेश्वर कृष्ण के साथ होगा। ऐसा ही अपना जीवन कैसा है, खट्टा मीठा, थोड़ी खुशी थोड़ा गम
इसमें प्योर कुछ मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी जो अच्छा है उसको हम पकड़ के चलना चाहिए, जो बुरा है उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जब भी जीवन में दुख होता है ना, तो केवल बैठकर ना ये ध्यान रखना, इसको आप भूलना नहीं कभी इस बात को। जीवन में दुख तो आएंगे, किसके जीवन में दुख नहीं आएंगे ऐसा है, गारंटी है किसके में? कोई भी ऐसा हाथ ऊपर करोगे मतलब जीवन में दुख आने वाले नहीं, आगे 10 साल तक नहीं आने वाले, उसके आगे पता नहीं, 10 साल तक तो बिल्कुल दुख नहीं आने वाला, ऐसा कोई है इसमें? अरे अगले क्षण की भी गारंटी नहीं है कि दुख आएगा कि नहीं आएगा। तो जब भी दुख आता है ना, तो हम लोगों को ना शांति से बैठकर क्या क्या वरदान मिले हमको आज तक, क्या क्या भाग्य की प्राप्ति हुई हमारे लिए, वो सब लिस्ट करना चाहिए उसका। व्हाट ऑल गुड थिंग्स हैव हैपेंड इन लाइफ, इस पर हम गर्व कर सकते हैं, आनंद कर सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं। आपको पता चलेगा अगर आप प्रामाणिकता से लिखोगे ना, तो बहुत लंबी लिस्ट बनेगी। सबसे पहली लिस्ट बनेगी कि आपको 2 आंखें अभी भी काम कर रही है, 2 कान अभी भी काम कर रहे हैं, 2 पैर अभी भी काम कर रहे हैं, 2 हाथ अभी भी काम कर रहे हैं, 60 साल की उम्र में 25 किलो का स्पीकर भी उठा सक रहे हैं, और अभी इतना दिमाग खराब नहीं हो गया, अभी तक याद भाई सब बहुत ठीक हो रही है। सो अच्छी पत्नी है, अच्छा पति है, या अच्छे देखभाल करने वाले भक्त हैं, रहने के लिए घर है, भोजन के लिए व्यवस्था है, ऐसा लिखते जाइए आप, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना वरदान हमको प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से कभी दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे दुखों के साथ में वरदान भी बहुत प्राप्त होते हैं हमको। तो उन्होंने कहा कि वो कैसे पहचानूंगा मैं उनको आने वाले काल में, लास्ट व्यक्ति आए बंद करके ना। तो उन्होंने वर्णन किया भगवान का कि वो 4 भुजा वाले होंगे, नीले रंग के होंगे, पीतांबर पहनने वाले होंगे, उनके हाथ में शंख चक्र पद्म गदा होगा, उनके मुकुट होगा, ऐसे बहुत वर्णन किया सुंदर। यथावकाश राजा को 3,000 पत्नियों के माध्यम से 3 करोड़ कन्याओं का लाभ हुआ। अभी मुझे पूछना नहीं है, आप डॉक्टर हो, ये कैसे हो गया होगा, कितने साल महीने का प्रेगनेंसी हो गया होगा और कितने साल, ये मुझे पता नहीं है, प्लीज़ डोंट आस्क मी। ये सब दिव्य बातें हैं, भगवान की बातों को तर्क से समझना बहुत मुश्किल है। तर्क लगाकर भगवान को समझोगे ना, तो भगवान अपने आप को अलग कर देंगे उसमें से, और आप तर्क ही करते रहोगे और क्या कहते हैं, भ्रमित हो जाओगे उसके पीछे। भगवान के विषय में तर्क लगाकर समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, भगवान के विषय में श्रद्धा से समझने का प्रयास करना चाहिए। श्रद्धा होगी तो आपको समझ में आएगा। अभी आप बोलेंगे भगवान ने मुरली बजाई तो वो ब्रह्मांड पार करके, विरजा पार करके वैकुंठ तक आवाज़ पहुंच गई, बोले कैसे हो सकता है ये, लेकिन भगवान के लिए क्या नामुमकिन है। तो फिर कन्याओं की प्राप्ति हुई, कन्याओं का जन्म हुआ, यथावकाश कन्याएं बड़ी हो गई। और विमल महाराज बड़े धार्मिक थे, बहुत यज्ञ करते थे, बहुत धार्मिक विधि करते थे, बहुत अच्छे राजा थे वो। तो वो जब कन्या उपहार हो गई ना, तो उन्होंने अपने दूत को वृंदावन भेज दिया ढूंढने के लिए, वो बालक जो मेरे कन्याओं के लिए पति बनेगा। तो वो दूत आता है, और तभी कृष्ण भगवान यहाँ पर ऐसे वन में खेल रहे हैं अपने ग्वाल बालों के साथ। तो कृष्ण बलराम सब लोग खेल रहे हैं, तो वो आके देखते हैं कि हाँ ये नीला बालक है ना, सब मिलता जुलता है इसका, जो भी वर्णन दिया है, दिया ना एड्रेस उसका, कैसे दिखता है वो, क्या सब कुछ मिलता जुलता है, एक ही बात नहीं मिल रही है, वो 4 भुजा वाला कहा था, ये 2 भुजा वाला है, सब कुछ मतलब 99.99 तक मिल गया सब, लेकिन वो एक बात अभी नहीं जमी। तो वो उदास होकर चला गया, और भगवान खेलते रहे और चले गए, वो अपना चला गया। और जब लौट के आया तो राजा को बताया ऐसे ऐसे हुआ, तो राजा बहुत दुखी हो गया, अभी क्या करना है। उतने में भीष्मदेव आए वहाँ पर, देखो समय कौन सा है, द्वापर युग का है, भीष्मदेव युवावस्था में है। अब युवावस्था में भीष्मदेव ने दिग्विजय किया था, दिग्विजय का मतलब जानते हैं आप, चारों दिशा में जाकर सभी को परास्त करना, या तो मित्र बनाना, या तो जैसे भी हो, सब लोग आपको सलाम करेंगे कि आप हमारे स्वामी हो, आप हमारे राजा हो। वो भी राजा हैं, लेकिन वो आपको टैक्स देंगे और सलाम भी करेंगे, और कभी युद्ध होगा तो आपकी सहायता भी करेंगे, मतलब आपके पक्ष में हो जाएंगे। तो चारों दिशाओं में सबको अपने पक्ष में कर लेना, मतलब दिग्विजय हो गया। दिग्विजय होने के बाद में फिर उसका यज्ञ होता है, राजसु यज्ञ होता है, फिर वो सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उसका गौरव होता है। तो भीष्मदेव उस दिग्विजय पर हैं। अभी वे सिंधु देश के राजा हैं, विमल देव, विमल राजा जो है वो सिंधु देश के राजा है। सिंधु देश किधर है, किधर है? सिंध प्रांत किधर है? पाकिस्तान में है, और वो पश्चिम और उत्तर के बीच में है। कौन सा दिशा है वो? आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, वायव्य दिशा में है। आज की तारीख में पाकिस्तान में है। तो उधर बुद्ध अपना दिग्विजय कर रहे थे, लेकिन विमल राजा उनके मित्र थे, भक्त थे, वैष्णव थे, तो युद्ध का कोई सवाल नहीं उठता है, बैठ के भोजन करके हाथ मिला के चले जाएंगे, है ना। तो उस समय वो दौड़ के आता है दूत, तो वो पूछते हैं उनको, महाराज जी ऐसी समस्या है हमारी, कैसे हम अभी करें। वो जाके वापस आया वो, तो भीष्मदेव उनको कहते हैं, मुझे एक रहस्य की बात पता है जो मैं आपको गुप्त रूप में बता रहा हूँ, कि वो चार भुजा वाले भगवान मथुरा में उनका जन्म हुआ था, मथुरा में अवतरित हुए थे वो, लेकिन देवकी के विनती की वजह से और मैं लीलाओं को संपन्न करने के लिए उन्होंने मथुरा में ही चार भुजा त्याग के दो भुजा होकर, द्विभुज होकर वो वसुदेव के टोकरी में से गोकुल पहुंच गए थे, और वही अभी वृंदावन में हैं और वही अभी खेल रहे हैं। तो यह रहस्य की बात भीष्मदेव की वजह से विमल राजा को मालूम पड़ी। जीवन में कोई समस्या होती ना, तो सच्चे हमारे मित्र वैष्णव ही होते हैं, बाकी सब लोग होते हैं लेकिन वो या तो पूरी हेल्प नहीं कर सकते हैं, या तो करते हैं तो कुछ स्वार्थी मदद करते हैं, कुछ उसमें से कुछ निकालना पड़ेगा, कुछ उसका फायदा उठाना पड़ेगा। सच्ची और निरपेक्ष भक्त जो होते हैं वो वैष्णव होते हैं। भीष्मदेव भी परम वैष्णव हैं। रामचरित प्रभु, तो भीष्मदेव ने ये कहा तो उसका उत्साह बढ़ गया। भीष्मदेव फिर चले गए, अपना हाथ मिलाकर आगे चले गए, और ये दूत वापस आया। जो दूत वापस वृंदावन में आया तो वैसे ही बच्चे खेल रहे हैं, तो वो उसी बालक को वापस देखता है तो बड़े खुश हो जाते हैं। इस बार जब दूसरी बार आए हैं तो कृष्ण भगवान उनको देखते हैं, पहले भी जानते हैं लेकिन वो ऐसे दिखाते कुछ पता ही नहीं है, लेकिन अगली बार जब आते हैं ना तभी कृष्ण भगवान थोड़े से बच्चों से अलग होते हैं और दूसरी झाड़ी में जाकर उसको मिलते हैं। तब जाकर वो दूत कहता है कि मैं विमल नरेश के तरफ से आया हूँ और ये मेरा उद्देश्य है, और सारी कन्याएं वहाँ पर उपवर हो गई हैं और आपका इंतज़ार है। तो भगवान जो है ना वो अपना एक रूप वहीं छोड़ देते हैं, गोपाल रूप, ग्वाल बालों के साथ में खेलने वाला, घर जाने वाला, सोने वाला, मैया की गोद में जो भी है, वो एक रूप वहीं छोड़ के हैं, दूसरे रूप से वो दूत के साथ में हवाई मार्ग से सिंधु देश पहुँचते हैं। और सिंधु देश पहुँचने के बाद जब भगवान ऐसे हवाई जहाज हवाई मार्ग से ऐसे आ रहे हैं, नीचे यहाँ सब यज्ञ हो रहे हैं, पहले यज्ञ तो चलते रहते थे, अनेक यज्ञ कुंड में यज्ञ हो रहे हैं, राजा बैठा हुआ है अपनी पत्नी के साथ, जैसे भगवान को आकाश से उतरते देखता है ना तुरंत खड़े हो जाते हैं प्रणाम करने के लिए, सब लोग खड़े हो जाते हैं, यज्ञ पुरोहित सब लोग खड़े हो जाते हैं। और उसी समय राजा अपने 3 करोड़ कन्याओं को श्रृंगार करके, दुल्हन बनाकर, अलंकार पहनकर, वस्त्र पहनकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर ले आता है वहाँ पर, भगवान का सत्कार कर तब तक आदेश दे के सब लोग दुल्हन बनकर वहाँ लौट के आते हैं। और उसी यज्ञ कुंड में, अनेक यज्ञ कुंड में भगवान 3 करोड़ रूप धारण करते हैं, 3 करोड़ रूप धारण करते हैं और अपने एक एक कन्या के साथ विवाह करते हैं। कितना अद्भुत उत्सव होगा वो, हाँ 3 करोड़ भगवान के स्वरूप हैं और सब लगा मंत्र बोले जा रहे हैं, भगवान माला पहना रहे हैं, पानी ग्रहण कर रहे हैं, सप्तपदी कर रहे हैं, हाँ कुमकुम विधि कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, सिंदूर दान कर रहे हैं, कन्यादान हो रहा है, बहुत सुंदर से कार्य होता है। और वो विवाह संपन्न होता है, बहुत जोरदार, क्या कहते हैं उसको, डाउरी को क्या कहते हैं, दहेज देते हैं उनको, रथ घोड़े आदि अलंकार, बहुत सारे दहेज देकर उनको विदा करते हैं। तो भगवान अपनी 3 करोड़ नई ब्याही हुई पत्नियों को लेकर हवाई मार्ग से फिर ब्रज में आते हैं। तो उनके लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी है, जहां पर दोस्त खेल रहे हैं वहां पर आ जाएं 3 करोड़ कन्याओं को लेकर, कैसा रहेगा, क्या होगा, आएंगे तो रस भंग हो जाएगा ना। या तो खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, पानी में कूद रहे हैं, मेंढक बन के कूद रहे हैं, पंछी की आवाज निकल रहे हैं, उतने में विवाहित होकर अपने पत्नियों को लेकर आएगा तो थोड़ा भाव चेंज हो जाएगा ना। तो भगवान वहां पर वो उस रूप में खेलते रहे और वो काम्य वन में आए इन 3 करोड़ पत्नियों को लेकर, और जहां पर हम लोग बैठे हैं इस पवित्र स्थान पर बैठकर उन्होंने पवित्र स्थान पर आकर क्या हुआ, इस पवित्र स्थान में उन्होंने 3 करोड़ पत्नियों के साथ रास रचाया, रास लीला 3 करोड़ रूप धारण किए और हर एक पत्नी के साथ में उन्होंने नृत्य किया। और वो नृत्य इतना अद्भुत था, कोई नहीं, केवल एकांत जगह पर केवल यही है दोनों, मतलब 3 करोड़ कृष्ण और 3 करोड़ पत्नियां, श्री राधे श्याम। तो उनके रास नृत्य के समय, रास नृत्य के समय उनके आंखों से प्रेम के अश्रु बहे, उनके शरीर से प्रेम के स्वेद बहे, उसको पसीना नहीं कह सकते हम, दिव्य शरीर है उनका, तो उनके छिद्रों में से दिव्य सुगंधित जल निकला, आंखों से अश्रु निकले और वो भगवान के आंखों से भी अश्रु निकले, भगवान से भी शरीर से दिव्य स्वेद जल निकला और वो सारा दिव्य सुगंधित प्रकाशित जल जो है वो इकट्ठा हुआ और विमल कुंड का निर्माण हुआ, विमल कुंड धाम की। देखिए कितनी अद्भुत जगह है, इतना दिव्य जल है ये, इसलिए आपको पहले कथा बता रहे हैं फिर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे जाएंगे तो सब जगह हरा पानी है, उसमें क्या है, इधर भी हाथ लगाया उधर भी हाथ लगाया, उधर कल गए थे उधर भी हाथ लगाया, एक ही बात है। लेकिन एक बात नहीं है, हर जगह पर अलग अलग भाव है। जैसे ही ये कुंड निर्माण हुआ 84,000 तीर्थ जो है विश्व में वो सब व्यक्ति रूप में इसमें प्रवेश कर गए, उन्होंने आश्रय लिया यहाँ पर आकर। जैसे कि प्रयागराज वहां पर सेवा कर रहे ना इलाहाबाद में, 3 नदियों का संगम है, वो एक पुरुष है प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग, वो व्यक्ति रूप है, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं तीर्थ के रूप में, लोग स्नान करके उसका पाप लेते हैं, मतलब भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उनका पाप ग्रहण करते हैं, उनको शुद्ध करके भेज देते हैं। तो वो सारे जो तीर्थ हैं वो भी अपनी शुद्धि चाहते हैं ना, उनको भी अपने शुद्ध करना है, वो भी भक्त है भगवान के, सेवा कर रहे हैं। जैसे कचरे वाला आदमी क्या है, वो रोज कचरा निकलता है, आप कचरा बनाते हो रोज निकलता है, लेकिन वो खुद को भी साफ करता है और अपना घर भी साफ करता है, वो भी जरूरत है ना। तो इस तरह से सारे तीर्थ जो हैं जो लोगों के पापों को धोने के लिए यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, भगवान की सेवा में सब लोगों के पाप धोने के लिए बैठे हुए हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं। तो ये जैसे ही कुंड निर्माण हुआ वैसे तुरंत उसमें 84,000 तीर्थ जो है वो प्रवेश कर गए। उसी समय भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि यहाँ पर जो भी स्नान करेगा, जो भी आचमन करेगा, जो भी जल स्पर्श करेगा, जो भी इसका स्मरण करेगा, वो कभी भी दोबारा लौटकर इस दुनिया में नहीं आएगा। भगवान ने इसे ब्रज में अनंत स्थान बना के रखे, लेकिन हम लोग भारतीय लोग कैसे हैं, हमको किसी की एक तो नॉलेज भी नहीं है, नॉलेज है तो उसकी वैल्यू भी नहीं है, और वैल्यू है तो कुछ करते नहीं हम लोग उसके लिए, क्योंकि कैसा है ना, समझो आपके पास 56 प्रकार के लड्डू हैं तो ठीक है, क्या है इसमें, कोई भी खा लेंगे, बीच में 2-3 खा लेंगे, बाकी 53 छोड़ देंगे, ऐसे क्या है इसमें। लेकिन एक टाइप का लड्डू होगा तो क्या करेंगे, अरे एक ही लड्डू है, एक ही प्रकार का लड्डू, इसको ही खा लो। जैसे ब्रिटिश देश में एक ही नदी है थेम्स नदी, वो कोई नदी नहीं है, उसमें एक ही नदी है देश में पूरे, तो इतना उसको संभालते हैं, बाप रे, खड़े रहेंगे तो उसका तल भी दिखता है हमको, इतना स्वच्छ पानी है, एक प्लास्टिक नहीं, एक पेपर नहीं, एक बोतल नहीं, कचरा नहीं, कुछ नहीं उसके अंदर, किसी को बोटिंग करने का अलाउड नहीं है, पूरा पहरा होता है वहां पर, एक ही नदी है ना खाली भारत में। वो हमारे गो कुमार जी के घर पर गए थे हम लोग एक बार, केरला में मुंबई से ट्रेन से गए थे, अरे एक बार गोवा शुरू हो गया ना गोवा, तो गोवा शुरू होने के बाद में हमारे गांव में से गाड़ी गुजरती है, उसके बाद में केरला शुरू होता है, हर 10 मिनट में एक नदी समुद्र की तरह, जितने को तो नाम भी पता नहीं लोगों को, इतने विशाल, उसमें क्या कहते हैं ना, अब्जोवधि नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े ब्रिज बने हुए हैं। 10-10 मिनट के बाद में एक ब्रिज आता है, उसके ऊपर ये बड़ी नदी होती है। कुछ कुछ के नाम पता है, कुछ कुछ के नाम नहीं पता है। शांभवी नदी मुल्की किनारे में है, बस आगे तो शोरनूर तक कितने नदियाँ, फिर गिनती भूल गए हम लोग, क्योंकि रात में सो गए तो कितनी नदियाँ गुजर गई उस बीच में। हमारे पास इतनी पवित्र नदियाँ हैं, सब हमको वो भक्ति देने के लिए सक्षम है, लेकिन हमारे को वैल्यू नहीं उसकी, वी डोंट केयर फॉर इट। हमारी नदियों को हम लोग गंदा कर देते हैं, उसमें मल मूत्र छोड़ते हैं, उसमें क्या क्या डालते हैं, उसके अंदर जो करना है कर लेते हैं, भैंस धोते हैं, जो भी काम है सब कर लेते हैं, गंदा कर देते हैं, फिर रोते रहते हैं, अरे ये मैली हो गई, मैली हो गई, गवर्नमेंट कुछ करता नहीं है। लेकिन जिसके गांव में जो नदी है उसका ही ड्यूटी है ना वो संभालने का, गवर्नमेंट करेगा लेकिन हम लोग भी कुछ करना चाहिए ना। आप करो, आप करो, आप क्यों नहीं करते, ऐसे कहने से क्या होता है। तो ऐसा ये स्थान है, और काम्य वन में ऐसे बहुत स्थान है, एक ही वन में ऐसे खचाखच भरे हुए स्थान। सब जगह पर कृष्ण प्रेम प्राप्ति का वरदान है, सब जगह पर पुनर्जन्म न होने का वरदान है, सब जन्म सब जगह पर आज की स्थिति में पाप मुक्त होने का भी वरदान है। बोलो। और अब मैंने कहा स्नान करने के लिए यहां पर वरदान बताया ना, तो स्नान कर सकते क्या आप? जी ठंड है इसमें, विचार करने से भी ऐसा विचार ही हो रहा है अभी, कुछ भी कांप रहे हैं विचार से ही। तो शास्त्र में 7 प्रकार के स्थान बताए हैं, उसमें आचमन जो है ना वो स्पर्श करना है ना पानी को, वो भी एक स्नान है। फिर आप 3 बार अगर शर डालेंगे, आचमन बोलते हैं उसको, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, 4 बार आप पियेंगे, 3 बार सर पे डालेंगे और उसको ग्रहण करेंगे, तो वो भी एक स्नान है। एक स्नान पूरा स्नान है पानी लेकर करना है। और एक स्नान है अग्नि स्नान, जो राख है ना कुंड की वो लगाते ना, वो भी एक स्नान है अग्नि स्नान। एक वायव्य स्नान है, एक रज स्नान है, जैसे रज लगा लिया ना तो साबुन से भी बढ़कर है, वो आत्मा को भी शुद्ध कर देती है। साबुन खाली आपके चमड़ी को शुद्ध कर देता है, आत्मा ऐसी मैली रहेगी, मन ऐसा ही मैला रहेगा, लेकिन रज लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कई प्रकार के स्नान हैं, स्नान हैं। मंदिर का जो तीर्थ है ना आज, वो पंचामृत, वो भी पीना भी एक स्नान है। ये सब आत्मा के स्नान है, ये सब प्रकार के स्नान है। उसमें से अगर आपको स्नान करना मुमकिन नहीं है तो स्मरण भी करना पावरफुल है। अगर आप घर जाएंगे और कुंड को अपने दिल में संभालेंगे, बैठ कर भी यहाँ पर दर्शन करेंगे, उसको याद करेंगे, फोटो निकालेंगे, देखते रहेंगे, तो वो भी एक प्रकार का स्नान है। और एक स्नान है मानसिक स्नान, जैसे अभी आप इतने जर्जर हो गए, बिड्ढे हो गए कि आप बिस्तर से उठ ही सकते नहीं हो, फिर भी मन में आप आचमन कर सकते हो विमल कुंड का, जमुना जी का, राधा कुंड, श्याम कुंड का, भानोखर का, हाँ पीली पोखर का, मन में आचमन कर सकते हैं कि सोच रहे कि मन में मैं जा रहा हूँ वहाँ पर और आचमन कर रहा हूँ, तो भी आपको उसका लाभ मिलेगा। कलयुग में ऐसा कहा गया है कि कलयुग के पहले वाले युगों में मन से भी किए हुए पाप गिने जाते थे। जैसे परशुराम की पत्नी थी, क्या नाम था उसका, परशुराम की माँ थी, क्या नाम था, रेणुका, रेणुका यमदग्नि की पत्नी थी। वो एक बार बहुत पतिव्रता थी अच्छी, वो एक बार जल लेने गई अपने कुंड के पास, तो वहाँ पर कुछ गंधर्व आए। अब गंधर्व तो स्वर्ग के होते हैं ना, बहुत सुंदर। तो कहते हैं एक क्षण के लिए उसके मन में मोह हुआ उनके प्रति, एक क्षण के लिए, ज़्यादा नहीं, तुरंत संवार लिया अपने आपने उसको, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, सही नहीं है, लेकिन आकर्षण तो हो गया उसको एक क्षण के लिए। और उसके पत्नी यमदग्नि जो थे, यमदग्नि वो तो ऋषि थे, जब पत्नी लौट के पानी लेकर आए ना, उसको देखकर ये समझ गए कि इसका मन भ्रष्ट हुआ एक क्षण के लिए, तत्काल उसका वध किया उसने, उन्होंने एक क्षण के लिए केवल विचलित हुई थी, वो मोहित हो गई थी। लेकिन वो किस युग में थी, पुराने युग में थी, उस समय मन के भी पापों को गिना जाता था, तो दंड के रूप में उसका वध किया गया। फिर परशुराम जी आए, फिर उन्होंने पति अपने पिताजी का बहुत सेवा किया, तो वो प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहिए आपको, बोले माँ को जीवन जीवंत करो, जीवन दान दो, तो माँ को बस जीवन दान प्राप्त किया। तात्पर्य क्या है कहने का, कि मन के अंदर के पापों को भी दंड दिया जाता था पुराने युगों में, लेकिन कलयुग में मन के द्वारा किए गए पाप, विचारों के द्वारा हम लोग विचारों में भोग करते ना, किसी स्त्री का विचार कर रहे हैं, किसी पुरुष का विचार कर रहे हैं और मन में भोग ले रहे हैं उनका, होता है ना ऐसे, एक्चुअली इट्स लाइक रियल ओनली, आप मन में ही सोच रहे हो तो भी उसी प्रकार के भोग का अनुभव करते हैं। तो ये सारे प्रकार के मन के पाप जो है वो उसको कलयुग में माफ कर दिया गया है। अगर वो पाप कलयुग में अगर माफ नहीं होते तो हम कहाँ होते, इमेजिन। हम तो हर क्षण 24 घंटे में हर क्षण मन में क्या भोग से विचार करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं। हाँ, अरे आपको क्या बताऊं, प्रवचन में कृष्ण कथा कह रहे हैं फिर भी मन में उस समय पाप के विचार आते रहते हैं, बोलो आप, मुझे पूछो क्योंकि मुझे अनुभव है इस बात का। कथा में कौन लोग बैठे हैं उनको देखकर भी मन में पाप के विचार आते रहते हैं, मुख से भगवान की कथा चल रही है लेकिन मन में कुछ और गुल खिल रहे हैं, ऐसा है ये मन। लेकिन भगवान की दयालु, देखो कलयुग में कितने वरदान दिए भगवान ने, एक तो मन के पाप माफ कर दिए, लेकिन मन के द्वारा किए गए पुण्य कार्य माफ नहीं, मतलब वो डिलीट नहीं किए हैं। तो मन के द्वारा आज भी आप गाय दान कर सकते हैं, अगर आप गरीब हो नहीं आपके पास पैसे गाय देने के लिए, मन से आप गाय दान कर सकते हो, गौदान। वसुदेव जी ने जब कृष्ण का जन्म हुआ ना जेल में, तो वो तो जेल में थे, अभी क्या करें, सब धन दौलत तो छुपी हुई है उधर, लॉक है। मन में 2,00,000 गाय दान कर दिया उन्होंने, वो भी कैसे, अरे मन में है तो कर दो यार, ऐसा नहीं, मन में सभी गायों को अलंकार पहनाया, सिंगों पर टोपियां पहनाई सोने की, पैरों में चांदी के घुंघरू पहनाए, पूंछ पर मोर पंख लगाए, गले में सोने की घंटा लगाई, मखमली का चादर चढ़वाई उनके ऊपर, इतने सारे अलंकार पहनकर 2,00,000 गायें दान कर दी उन्होंने मन में। तो वैसे इस युग में भी जब आप मन में कोई कार्य करते हो, समझो अभी आप बीमार हो गए हो एकदम, तो कुछ नहीं कर सकते भगवान के सिवा, तो मन में आप 56 भोग बनाकर अच्छी सोने की थाली में सजाकर, सोने के चमचे सोने के ग्लास रखकर, मखमल के कपड़े पर थालियां रखकर भगवान को आप घंटी बजाकर मंत्र बोलकर भोग लगा सकते हो, अब भगवान स्वीकार करेंगे उसको। तो मन के पापों को आपको डिलीट कर दिया है लेकिन मन के पुण्य को डिलीट नहीं किया है, कितने भाग्य की बात है। अब बताओ आप में से कौन ऐसे लोग हैं जो मन से भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं? हाँ, आप करते नहीं हो, करना नहीं चाहते हो, ये बात अलग है, लेकिन जब शरीर से कर सकते हो तब मन से करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप शरीर से 1,00,000 दान दे सकते हो तो आप मन में ही 1,00,000 दे रहे हो, ऐसा मत करो, भगवान जानते हैं चालाकी कैसे करते हैं हम लोग, है ना। नॉलेज का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं, है ना। कोई नॉलेज दिया आपको तो उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो जो प्रामाणिक जीव है उसकी प्रामाणिक भावना को भगवान पहचानते हैं कि ये चीटर है, चापलूसी कर रहा है, कि ये प्रामाणिक है, वो भगवान जानते हैं। उस प्रकार से आपके मन के पुण्य कार्यों को लाभ देते हो। क्या भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसे आप मेरे प्रति भावना रखते हो वैसे ही मैं उसका प्रतिसाद देता हूँ। अगर मन में भी आप चापलूसी कर रहे हो तो चापलूसी का जवाब मिलेगा आपको, क्योंकि भगवान ने और गीता में भी कहा है कि जितने भी दुनिया में चीटर्स हैं उसमें से बेस्ट चीटर मैं हूँ, अमंग द चीटर्स आई एम द बेस्ट बेस्ट वन। तो उनके साथ चीटर बन के जाओगे तो आपको वो बड़ा अच्छा धोखा देंगे ठीक तरह से, इसलिए भगवान के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भगवान बड़े भावना प्रधान है, भावुक है बहुत, लेकिन चापलूसी के लिए चापलूस भी है, राक्षस के लिए राक्षस है। हाँ, उन्होंने राक्षस के साथ राष्ट्रयुद्ध नहीं किया, जब अरिष्टासुर आया तो मार दिया उसको उन्होंने, ऐसा नहीं बोला अरे अरिष्टासुर क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, आओ रास के लिए रासलीला करेंगे आपके साथ, ऐसा नहीं बताया। वो दुश्मन के भाव से आया तो उसको पीट दिया भगवान ने, कंस ने उस शत्रुत्व स्वीकार किया, खत्म कर दिया भगवान ने उसको, और गोपियों ने प्यार किया तो उनको प्यार दिया उन्होंने। देखो आप सोचो इसके बारे में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बिमल कुंड आपके लिए प्रस्तुत है, यहाँ पर आप उतरिए, बड़े प्रेम भाव से आचमन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जो लोग नहीं आपके घर से आए हैं यात्रा में उनके लिए प्रार्थना कीजिए, सबके लिए प्रार्थना कीजिए, और दिल में समा लीजिए उसको और ले जाइए मुंबई, और मुंबई में भी याद कीजिए कितना सुंदर कुंड था, यहाँ पर भगवान ने इतनी अद्भुत लीला करके उस कुंड को तैयार किया। विमल कुंड धाम की जय।